हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 50। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासी नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासी नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासीनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासी नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। शब्द का अर्थ देखिए, सिद्धिं अर्थात सिद्धि को प्राप्तो प्राप्त किया हुआ, यथा जिस प्रकार ब्रह्म मन परमेश्वर जो भगवान का ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, तथा उसी प्रकार आपनोति प्राप्त करता है निबोध समझने का यत्न करो। भगवान कह रहे हैं वो किस तरह से प्राप्त होता है वो समझने का यत्न करो, मैं मुझसे समा से न संक्षेप में एव निश्चय ही कौन्तेय हे कुंती पुत्र निष्ठा ज्ञान या परा। निष्ठा मतलब अवस्था, ज्ञान मतलब ज्ञान की या परा, यानी भगवान कह रहे हैं। अनुवाद देखिए, हे कुंती पुत्र जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की आवश्यकता है उसको प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। यानी भगवान अभी बता रहे हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद सिद्धि कैसे प्राप्त, जैसे भगवान ने कहा कि सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है उसको प्राप्त करता है वो किस तरह से होता है, वो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो भगवान अभी संन्यास की विधि के विषय में हमें बताएंगे कि किस तरह से संन्यास के बाद हमें सिद्धि प्राप्त होती है। इन पवित्र और आध्यात्मिक शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं स सागर जातम सहगण रघुनाथन वितंतम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 48 तक कर्म के विषय में कर्म योग के विषय में बताया भगवत अर्पित कर्म के किस तरह से हम कार्य करें और उसके सारे फल भगवान को अर्पण करें ये होता है कर्म योग। और क्योंकि अर्जुन ने भगवान से पूछा था संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशनी सुदन कि मैं संन्यास आश्रम का भी जानने का उद्देश्य चाहता हूँ कि त्याग का क्या उद्देश्य है और संन्यास आश्रम का क्या उद्देश्य। तो त्याग के उद्देश्य के विषय में भगवान ने 48 श्लोक बताए और संन्यास के विषय में भगवान श्री कृष्ण अभी 49 से बोलना स्टार्ट किए हैं और श्लोक नंबर 55 तक भगवान बताएंगे कि संन्यास की विधि क्यों है। क्यों संक्षिप्त में? क्योंकि ये विधि सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि कर्म योग तो कर सकता है व्यक्ति, अपने अपने कर्मों के साथ कार्य करते हुए फल भगवान को अर्पण कर सकता, लेकिन इस कलयुग में संन्यास की विधि बहुत कठिन है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त भगवान कहते हैं सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, यानी कि किस प्रकार से ब्रह्म की सिद्धि को प्राप्त किया जाता है तथाप्नोति निबोधमे, वो मुझ से समझने का प्रयास करो। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि वो स्टेज को किस तरह से प्राप्त कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से 50 से भगवान ये बताएंगे कि सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यापरा, कि मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि सर्वोच्च ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है। वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है, जो आगे भगवान श्री कृष्ण ऐसे करेंगे ना तो हम बताएंगे भगवान श्लोक नंबर 44 में क्या कहते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, कि आप ब्रह्म भूत को प्राप्त करने के बाद वहां तक आपको स्टॉप नहीं करना है, उससे आगे बढ़ना है और आगे क्या है मद भक्तिम नहीं भक्ति लान भक्ति की तरफ आना। तो यहाँ ये स्टेप बाय स्टेप भगवान बता रहे हैं। तो ये पहला स्टेप जैसे श्रीमद् भागवत में बताया जाता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, तो इस चीज को भगवान बता रहे हैं। पहले क्या भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोधन है, तो ब्रह्म की सिद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 50, 51, 52, 53 इसमें भगवान परमात्मा के विषय में बताएंगे कि भाई आप कैसे हृदय के अंदर उसको महसूस करो और उसके बाद लभते परम मद भक्ति लभते परम। तो अगर सीरीज में देखेंगे तो एंड कहाँ पर होगा, भगवान भक्ति पर एंड करेंगे, लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की विधि बता रहे हैं, संन्यास की विधि बता रहे हैं कि जिसको ज्ञान मार्ग में निष्ठा होती है वो उसके द्वारा व्यक्ति प्रगति करता है, धीरे धीरे प्रगति करता है और भक्ति तक पहुंचता है। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी लोग बहुत कठिन ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर प्रकृति के चुंगल से निकलने का प्रयास करते हैं नियमित भक्ति, लेकिन नियमित भक्ति करने से सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। फिर उसमें प्रयास करने, क्योंकि आसक्ति चेंज हो गई ना, भगवान के अंदर प्रेम लग गया, तो फिर आप मन जो है वो संसार में लगेगा ही नहीं, उसका मन दुनिया में नहीं लगेगा, आध्यात्म में लगेगा और भगवान के चरण कमल के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति करेगा ना वो। अब ज्ञान योग में आपको सीरीज में आना पड़ता है, क्रमशः ऊपर उठना पड़ता है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि संन्यास की विधि वास्तव में भक्ति में समाप्त होती है। बहुत सुंदर रीति से श्री प्रभुपाद जी समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने पहले हमें बताया असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। भगवान ने तो बताया कि जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान के इसी चीज को श्री प्रभुपाद ने हमें कैसे बताया कि सन्यासी जो है उसको अपने सारे कार्यकलापों के बंधन से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति पर कार्य, यानी संन्यास ना मिले, वृत्ति पर कार्य करते करेगा अगर कृष्ण भावनामृत में रहकर, तो परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया जाता है, भगवान यदि सेंटर में आ गए तो फिर आप भौतिक स्थिति पर रहते हुए भी आध्यात्मिक स्थिति तक ऊपर उठते हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त होती है। ये ब्रह्म की चरम अवस्था, यहाँ पर इसको ये नहीं समझना चाहिए, ये जो ब्रह्म लिखा हो ना, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म। अब ये तो नवीन स्टेज है कि आप इतना शुद्ध हो जाते हो कि ब्रह्म की स्टेज तक पहुंचते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्मों के बंधनों से छूट जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्म में एकाकार हो जाते हो, जैसे कुछ लोग इस श्लोक का तात्पर्य ऐसे करते हैं सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म, कि आप ब्रह्म के अंदर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बहुत ही क्लियर ये बात 2.12 में बताई है, न त्वे वाहम जात नासम न त्वम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, कि कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था या ये राजा नहीं थे, और ना ही भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने पहले ही कह दिया कि आपका अस्तित्व कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी एक दिन ऐसा आएगा जब भक्ति करते 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 आप उसमें समा जाओगे, ऐसा नहीं। ब्रह्मभूत जो अवस्था है उसमें क्या है कि आप भगवान के दास हो जाते हो, भगवान अपने अस्तित्व को, रियल स्वरूप को प्राप्त कर देते हो। वास्तव में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इस जीवन में और वैकुंठ में उसके लिए कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर भी उसको भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है और वैकुंठ में जाकर, वहाँ भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में भी जाकर उसे वही भगवान की सेवा, स्वरूप उसका उसको प्राप्त हो जाता है और उसी स्वरूप अपने स्वरूप के अनुसार अंतर्गत वो वहां पर भगवान की सेवा करता है। ये स्टेज है ज्ञान की पराकाष्ठा, यानी कि ज्ञान हासिल करने के लिए करने का उद्देश्य क्या है कि आपको आपके वास्तविक स्वरूप के विषय में पता चले, और भगवान की प्राप्ति करने के लिए यानी कि भगवान की प्राप्ति करने का क्या है कि भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता। आगे भगवान बताएंगे कि केवल भक्त्या माम अभिजानन्ति, कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को जानना है, उसके लिए और कोई विधि नहीं है। ये तो स्टेज है, डायरेक्ट से हम लोग भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का एक तरीका भगवान बता रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, यानी कि वो सन्यास नहीं ग्रहण करता है, सिर्फ अपने कर्मों के फलों को भगवान की तुष्टि के लिए त्यागता है, तो उसे ब्रह्म की चरम सिद्धावस्था प्राप्त होती है। ये ब्रह्म की चरम सिद्धावस्था सिद्धिम प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा प्राप्ति निबोध में। ये श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या करना है आपको, अपने कर्मों के फलों को भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए त्याग देना है। भागवतम महापुराण में पृथ्वी महाराज का उदाहरण आता है कि पृथ्वी महाराज ने अपना राज छोड़ के अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले जाते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा। यानी कि भगवान की जो भक्ति है उसके लिए क्या करना है, आपको भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी है, और कोई कार्य नहीं करना है। वहां पर भी जाकर भक्ति में आपको यानी कि दूसरी चीजों से छोड़ के भक्ति के जो नियम है उसको, और इस कलयुग में तो सन्यास ग्रहण करना अत्यधिक कठिन है कि व्यक्ति जंगल में चला जाए और अपने समस्त त्याग कर दे हर चीज का। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। क्या विधि है कि अपने कर्मों के फलों को भगवान के चरणों में त्याग देना। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में आएगा। यानी कि यहाँ पर तो भगवान ने क्या बताया है कि जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था यानी अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान है, उसके विषय में बताया भगवान ने कि ब्रह्म को किस तरह से प्राप्त करता है, उससे मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये अभी बताना शुरू किया है और आगे श्री प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं कि ज्ञान की सिद्ध अवस्था, वास्तविक सिद्ध शुद्ध ज्ञान क्या है, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। और आगे आगे भगवान श्री कृष्ण हमें इसके विषय में बताएंगे। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण 14.26 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। श्लोक नंबर 21 14.21 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से तीन प्रश्न पूछे। अर्जुन ने कहा कैलिंग स्त्रीन गुणानीतान अतीतो भवति प्रभो किमाचरः कथं चैस्तान त्रीन गुणा अतिवर्तते। अर्जुन ने कहा हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों से किस प्रकार लांग जाता है। अब भगवान से तीन चीजें पूछी कि उस वो तीनों गुणों से परे है, उसके लक्षण कौन से होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है, और वो किस तरह से उसको त्यागता है, तीनों गुणों को कैसे त्यागता है, और तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठ जाता है, तो इनको पार्क कैसे कर लेता है, उसका आंसर भगवान श्री कृष्ण देंगे 14.26 में। भगवान कहते हैं बहुत ही सुंदर क्या भगवान ने कहा है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति सगुण समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग देता है। यानी कि प्रकृति के गुणों को लांगने का तरीका क्या, भगवान ने बताया कि सारी परिस्थितियों में पूर्ण भक्ति में यदि हम लगे रहते हैं, भक्ति यदि कर सक रहे हैं डायरेक्ट से भगवान की, तो फिर वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। वास्तविकता क्या है, भक्ति में लगे रहने से आप खुद ब खुद उस स्थिति को, जो प्योर स्थिति है, जो परम सिद्धि है, उसको प्राप्त करते हो। अब इसमें ब्रह्म बोल रहा है कल्पते, या फिर हमारे आज के श्लोक में भी ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, जो ब्रह्म की स्टेज आई है उसके विषय में 14.26 के तात्पर्य में थोड़ा नीचे से आप देखेंगे, उसमें श्री प्रभुपाद ने क्या बताया है कि कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चित आनंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला है। क्वालिटीज वही है। अब ब्रह्म भूयाय कल्पते, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के अंदर वो आ जाता, लेकिन उसकी क्वालिटीज वापस से उभर के आ जाती। अभी हम क्योंकि प्रकृति के अंदर तीनों गुणों के अंदर झगड़े हुए हैं, लेकिन तीनों गुणों से बाहर आने के बाद ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म की स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति योग आगे बताए शिवपाद ने कहा, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। वो इंडिविजुअलिटी जो उसकी है, उसकी व्यष्टितता, उसका अस्तित्व बना रहता है। यहाँ पर बताया ना, व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न नहीं होता है। अगर अंतर नहीं बना रहा, आप उसके अंदर चले गए, तो फिर भक्ति योग कहाँ से आया। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के ही बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का वस्तित्व वर्तमान रहता है, यानी कि दो होने चाहिए ना। अगर एक के अंदर आप चले जाओगे, तो फिर अगर ब्रह्म की स्टेज को आप भगवान के अंतर में लीन होना समझते हो, तो फिर आप तो रहे नहीं ना। फिर तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया कि भक्ति में दो व्यक्तियों का वजूद होना जरूरी है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य वर्तमान रहता है, अन्यथा यहाँ लिखा है कि यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर तक स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। अब ब्रह्म की स्टेज पर आपको पहुंचना है, इसलिए नहीं कि उसके अंदर चले जाओ, इसलिए कि आप उस स्टेज पर पहुंचोगे तो भगवान की सेवा करोगे ना। अब मैं इतना नीचे होऊंगा और भगवान इतना ऊपर वाले स्टेज पर होगा, तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे कर सकेंगे। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर आने के बाद, गुणातीत होने के बाद भगवान के ब्रह्म स्टेज तक पहुंचते हैं। उदाहरणार्थ राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इसी तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। भौतिक कलमश से मुक्त होने का मतलब है ब्रह्म स्टेज तक पहुंचना, पवित्र स्टेज पर पहुंचना। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म के अंदर समा जाना। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मैव संभ्रमापयति, यानी इसका अर्थ ये है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए। गुण यानी कि जिस तरह भगवान कैसे निर्गुण है, अब जब तक हम रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण में रहेंगे, तो फिर हम भौतिक स्थिति में रहेंगे, लेकिन इन गुणों को पार करने के बाद, अब इस संसार में भले सत्वगुण बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि हमें तो भगवान तक पहुंचना है ना, भगवान की भक्ति करनी, भगवान की सेवा करनी, इसलिए शुद्ध सत्व में आना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। फिर हम चाहे संसार में रहकर करें या फिर भगवान के पास, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुणातीत यानी शुद्ध सत्व में तो आना पड़ेगा। इस इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है, यानी कि अपनी उसकी पर्सनैलिटी जो होती है, उसका इंडिविजुअलिटी जो होती है वो नहीं खोती, उसके अंदर समा नहीं जाता है। कुछ कुछ लोग इस श्लोक के विषय में बताते हैं कि भगवान ने कहा है सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोधमे, कि हे कुंती पुत्र जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करता है। परम सिद्धावस्था क्या है? गुणों से ऊपर उठना। भगवान के अंदर लीन ये ब्रह्म वाला ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बहुत ही क्लियर बताया। और इसी चीज को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि देखो ज्ञान हासिल करने का रियल मकसद क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा है कि भगवान को जानना और भगवान की भक्ति करना। अब आप अगर यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात लिखिए कि अगर किसी की पाचन शक्ति प्रबल है, यानी कि अगर किसी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो भोजन के बाद मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे ही अगर मन भगवान की भक्ति में लग जाता है तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको ज्ञान योग ध्यान योग ये सब करने की जरूरत नहीं है। भक्ति इतनी पवित्र है कि आपको डायरेक्ट से भगवान के साथ आपका लिंक, जैसे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम, कि ये जो ज्ञान और कर्म आदि जितने भी कार्य हैं वो सब शून्य, वो सब खत्म, अन्य अभिलाषिता उसकी कोई अभिलाषा ही नहीं है। ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल है ना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, कि उत्तम भक्ति क्या है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। यदि ये स्टेज आप डायरेक्ट से किसी के अंदर, जैसे गुरु और कृष्ण कृपा, चैतन्य महाप्रभु ये भी बताते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मयते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता भी। ये भक्ति लता का बीज जो है वो यदि गुरु और कृष्ण की कृपा से किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसको अन्य कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियमित भक्ति करने से सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। उसको ज्ञान योग के चक्कर में, ध्यान योग के चक्कर में, उसका मन आध्यात्म में लगे रहने के कारण वो भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ उसको याद नहीं रहता, क्योंकि गुरु महाराज का सानिध्य, गुरु महाराज की कृपा से और भगवान के कृपा से उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है। तो यही है आगे चल के भगवान, जब हमें आगे हम थोड़ा जाएंगे तो 54 से लेकर भगवान भक्ति के विषय में बताएंगे। 55 में भगवान कहेंगे भक्त्या माम अभिजानंती, सिर्फ भक्ति भक्ति ही मुझे जान सकता है, ज्ञानी ध्यानी इस लोग मुझे नहीं जान सकते, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। लेकिन ये स्टेप वाइज भगवान बता रहे हैं और आगे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।